बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदारिस इमामिया पाकिस्तान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के मारूफ प्रोग्राम हमारे मकतब में नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अली मेहदी। मेरी तरफ से आपको अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, आज का हमारा टॉपिक है कुर्बानी ज़रूर करें लेकिन। नाज़रीन किराम, ईद कुर्बान करीब है और आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो अपने कुर्बानी के जानवर लेने के लिए मार्केट्स में मौजूद हैं और इसी हवाले से हमने ये प्रोग्राम रखा है कि जिसका टॉपिक है कुर्बानी ज़रूर करें लेकिन। और इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है इस टॉपिक पे बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अली जाहिदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब, ये देख रहे हैं कि आजकल कुर्बानी का मौसम है, कुर्बानी का सीज़न करीब है, देख रहे हैं कि मार्केट्स में रश है, लोग आ रहे हैं, कुर्बानी के जानवर खरीद रहे हैं। इस्लाम में कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है?
बहुत शुक्रिया। देखें, इस्लाम में कुर्बानी एक बहुत अहम फरीज़ा है और यह कुर्बानी जो हम करते हैं माह ज़िलहिज में, तो बुनियादी तौर पर यह तो देखा जाए तो माल की कुर्बानी है।
माल की कुर्बानी,
यानी अगर आप एक गाय ख़रीद रहे हैं, ऊँट ख़रीद रहे हैं या भेड़ बकरी ख़रीद रहे हैं, तो वो तो असल में माल को अपना जो है वो कुर्बान कर रहे हैं। और ये जो हम अपने गली कुचों में, मोहल्ले में कुर्बानी करते हैं, ये असल में उस कुर्बानी की जगह है जो लोग हाजी जाके मीना में कुर्बानी करते हैं।
जी,
जो लोग मीना में नहीं जा पा रहे हैं, जो हज नहीं कर रहे हैं, तो उनको कहा गया है कि उसके लिए ताकीद है, सुन्नत है, मुअक्कदा है हमारे यहाँ कि कुर्बानी करें वो। तो ये असल में तो माल की कुर्बानी है, लेकिन असल कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है दीन इस्लाम में अगर आप देखें तो उसमें तो इस तरह है कि इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, उसकी खातिर अल्लाह ने इस कायनात को खल्क किया है और दुनिया की जो दीगर मखलूक़ात है वो उसके सामने सर झुकाती है। यानी अगर आप इस तरतीब में देखें कि जमादात और नबातात और हैवानात और इंसान,
जी,
तो जो जमादात हैं वो हैवानात के सामने अपने आप को पेश करते हैं और नबातात के सामने, नबातात जो है पौधा ज़मीन से निकलता है तो ज़मीन उसको जगह देती है, मिट्टी उसको जगह देती है, पानी और सॉल्ट और मिनरल ये सब चीज़ें उसको प्रोवाइड करती है ताकि वो ग्रो कर सके।
जी,
फिर हैवान जो है जो उससे ऊपर दर्जे की मखलूक है वो आता है और वो मसलन उस पौधे को खा जाता है, पौधा अपने आप को पेश कर देता है, और इंसान जो है वो हैवान को खा जाता है या पौधे को खा जाता है। तो वो हैवान जो है इंसान को उसके सामने अपने आप को पेश कर देता है। अब इंसान को अपने आप को किसके सामने पेश करना चाहिए, यानी किसकी खातिर कुर्बानी देनी चाहिए?
जाहिर है अपने से किसी बढ़कर
इंसान को ऑफकोर्स जो है वो अगर किसी के लिए कुर्बानी देनी चाहिए तो वो अपने खुदा की खातिर कुर्बानी देनी चाहिए, खुदा की राह में कुर्बानी देनी चाहिए। ठीक है, तो कुर्बानी का फलसफा ये है कि हमेशा अदना चीज़ जो है वो आला चीज़ पर कुर्बान होती है।
जी,
ठीक है ना। इंसान बीमार होता है तो सरके में बकरे को काट देते हैं, ऐसा नहीं होता बकरा बीमार होता है इंसान को काट देते हैं। तो फलसफा ये है कि हमेशा अदना चीज़ जो है वो आला चीज़ के लिए कुर्बानी देती है। तो ये जो कुर्बानी है माह ज़िलहिज वाली कुर्बानी, ईद कुर्बान वाली कुर्बानी, ये भी अहम है क्योंकि इसकी भी ताकीद है, सुन्नत है, और कहा गया है कि अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो कुछ लोग मिलके कर लें, इज्तिमाई कुर्बानी कर लें।
सही,
ठीक है। लेकिन ये है कि इस कुर्बानी के ज़रिए आप हैवान को ज़िबा करें और उसका गोश्त खुद भी इस्तेमाल करें और माशरे के जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं जो बेचारे गोश्त खरीद के नहीं खा सकते,
जी,
तो उनको भी दें।
ये भी देखा जाता है कि मार्केट्स में रश है, नमूदो नुमाइश कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग जानवर, गाय, बकरे और ये सब चीज़ें खरीदें, इसमें नमूदो नुमाइश का इतना ज़्यादा कंसर्न ख़ास तौर से हमारे इस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या वजह?
जी, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो जो जो इस्लामी शायर हैं,
जी जी,
उनकी रूह आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और उसके अंदर जो है वो नमूद और नुमाइश और ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो कुर्बानी भी उसका शिकार हो रही है। जाहिर है, एक तो हर चीज़ के अंदर जब आप बिज़नेस को इन्वॉल्व कर देते हैं, मार्केटिंग को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो उसकी रूह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाती है। अब सिलसिला ये है कि ये एक बहुत बहुत बड़ा कारोबार है, करोड़ों अरबों का कारोबार है, करोड़ों का लफ्ज़ कम है, अरबों का कारोबार है ये, अरबों खरबों का, कि हैवानात जानवर आ रहे हैं फिर उनको टीवी में दिखाया जा रहा है। तो अब चूंकि चैनल्स भी उसको इस तरह दिखाते हैं, मसलन آٹھ فٹ کا جانور آ گیا. پتہ نہیں آٹھ فٹ کا جانور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, میں نے کہیں دیکھا کہہ رہے ہیں آٹھ فٹ, آٹھ فٹ تو بہت زیادہ,
آٹھ لاکھ کا ہے,
آٹھ لاکھ کا آ گیا, اس کے نام رکھ دیے گئے ہیں, اس کو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے, پھر جو خرید کر لے کے آ رہا ہے وہ اپنے محلے میں اس کی نمائش کر رہا ہے, لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں, تو جو اس کی روح ہے تو وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے. تو بنیادی طور پر اس میں دیکھیں قرآن کریم نے جو سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے, لَن يَرَانَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا,
جی جی سبحان
کہ خدا تک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے,
جی
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, بلکہ جو تقوی ہے تمہارا نا وہ اصل میں پہنچتا ہے.
جی جی
تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اونچی گائے لے کر آ جائے گا یا بڑی سنگوں والی گائے لے کر آئے تو اس سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا, تو ایسا نہیں ہے. جو تقویٰ کے ساتھ یعنی خلوص کے ساتھ قربانی پیش کرے گا, دیکھیں قربانی کے بارے میں قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بھی ہے سورہ بنی اسرائیل میں, اور اس میں کیا کہا گیا, ایک بھائی نے قربانی پیش کی, دونوں بھائی نے قربانی پیش کی, چھوٹے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی, بڑے کی قبول نہیں ہوئی. چھوٹے بھائی نے کہا, بڑے نے کہا میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی, ممکن ہے اس زمانے میں اندازہ ہو جاتا ہو میری قربانی قبول نہیں ہوئی. تو جو چھوٹا بھائی تھا یعنی حابیل چھوٹا تھا اور قابیل بڑا تھا, تو حابیل نے کہا کہ مجھے کیا پتا تمہاری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی, مجھے تو بس ایک سادہ سی بات پتا ہے کہ انما يتقبل الله من المتقين, خدا تو صرف متقین کی چیزیں قبول کرتا ہے.
خلوص متقین,
اس پہ وہ ناراض ہو گیا ظاہر ہے اور پھر اس نے قتل کر دیا اس کو. لیکن بات جو ہے وہ بنیادی وہ یہی ہے, ظاہر ہے قرآن کریم کی آیت میں بھی وہ چیز آ گئی کہ خدا جو ہے وہ چیزیں قبول کرتا ہے جو تقویٰ کے ساتھ پیش کی جائے, اور یہاں پہ بھی سورہ حج والی آیت میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ خدا تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ گوشت اور خون خدا تک پہنچتا ہے تو زیادہ گوشت ہوگا, اگر آٹھ من گوشت نکل آئے گا تو زیادہ ثواب ملے گا خلوص کے ساتھ. تو یہ جو نمود و نمائش کا سلسلہ ہے لے کے جانور کو پھرنا, اچھا ایک فیشن یہ بھی ہے ہمارے یہاں کہ کوئی جو ہے وہ سوزوکی میں گائے لے کے جا رہا ہے, یہ ہم موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں, چلتے چلتے مجھے کتنے کا لیا. ارے بھائی کیا آپ کا کنسرن ہے کتنے کا لیا,
صحیح بات ہے, وہ بھی بڑے شوق سے بتا
رہے ہیں, وہ شوق سے بتا رہے ہیں اتنے کا لیا,
بڑھا کے بتا
کبھی بڑھا کے بتاتے ہیں کبھی کہتا نہیں اتنے کا کہہ رہا تھا کہ اتنے میں لے لیا.
جی جی
یہ اپنی ایفیشنسی بتاتا ہے کہ وہ تو کہتا رہا تھا یہ دو لاکھ کا لیکن میں نے ایک 80 میں لے لیا. تو یہ بتانا اور یہ پوچھنا کہ کتنے کا لیا,
صحیح,
یہ کیا ظاہر کر رہا ہے,
کیا تعلق,
یہ قربانی کی روح کے مطابق تو نہیں ہے یہ چیز, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اس کو اس طرح لے کے پھرانا گھمانا تاکہ لوگوں کی نظروں میں وہ آئے اور کمپیئر کرنا کہ فلاں کی گائے ایسی ہے اور ہماری گائے ایسی ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قربانی کے روح کے خلاف ہیں.
اسی طرح اسے ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ گوشت کا جو مصرف ہے وصل کیا ہے, اکثر دیکھا گیا ہے لوگ اپنے فریج ڈی فریزر اور یہ سب بھر لیتے ہیں, وہ جو کہا گیا مشہور ہے کہ تین حصے سے کیے ہیں, اس پہ ذرا روشنی ڈالتی.
جی بالکل, اس کے تین حصے کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور اس میں ایک حصہ بے شک اپنے لیے رکھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے اپنے لیے رکھنے میں, تو اپنے لیے رکھنا اور اپنے رشتہ داروں کو دینا اور غریبوں کو فقراء کو بانٹنا, یہ سب کا حصہ اس کے اندر شامل ہے. اور اس کا بنیادی ایک فلسفہ یہ بھی ہے نا کہ معاشرے کے ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنی عام زندگی میں, ابھی آج دیکھ لیں کہ گوشت کی قیمت کتنی ہو گئی ہے, تو ایک عام آدمی بیچارہ گوشت کیسے خریدے گا, وہ سبزی نہیں خرید پا رہا ہے یہاں تو یہ حال ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے کم از کم قربانی میں آپ گوشت ان کو دے رہے ہیں
ایام میں کم از کم کافی حد تک وہ کھا پی
لیں. جی بالکل, تو یہ اس کا ایک حصہ ہے, اپنے فریج کو بھی بھر سکتے ہیں لیکن اس اپنے حصے سے بھریں, ٹھیک ہے, جو دوسروں کا حصہ ہے وہ ان کو پہنچائیں.
اور یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ جیسے ہی قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے عید قربان اور تین روز تک لگاتار, تو اس کے بعد پھر پورے شہر میں اور پورے ملک میں آپ ایک دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے گندگی ہے, غلاظت ہے, یہ سب چیزیں, یہ اس کا کیا ہمارے اسلام سے کیا
ایک, یہ بالکل ایک حقیقت ہے, اور اس کو آپ اپنے ملک میں تو ہم بعد میں بات کریں گے, جو حج میں لوگ قربانی کرتے ہیں نا وہاں جا کر,
اچھا
تو وہاں پہ بھی بہت برا حال ہوتا ہے,
वहां तो सुना है कि बड़ा मैनेज करते हैं वो लोग सब चीजों
को। नहीं नहीं मैनेज नहीं करते, मैनेज इस तरह होता है कि जो लोग सरकारी स्लॉटर हाउस के टोकन ले लेते हैं
जी जी,
तो वो तो वहीं हो जाता है, वो तो उनको पता भी नहीं चलता, बस वो हो गया वहां पे, ठीक है। और वो जो होता है सरकारी स्लॉटर हाउसेस के अंदर, उनके गोश्त को उनको वो बाकायदा महफूज भी करते हैं और पहुंचाते भी हैं बकौल उनके मुस्तहक लोगों के तक जो है वो सऊदी अरब के अंदर या शायद उसके बाहर अफ्रीकन कंट्रीज में दीगर ममालिक के अंदर। लेकिन जो लोग जाके खुद वहां काट रहे हैं, एक बकरा कटा हुआ गिरा हुआ है उसके ऊपर एक और गिरा के काट दिया, एक दुम्बा गिरा हुआ उसके ऊपर दो दुम्बे और गिरा दिए, तो वो खून और गंदगी की वजह से वो काबिल इस्तेमाल होता ही नहीं है।
ये जो हुज्जाज है उनका तो आंखों देखा हाल है, हाँ देखते हैं जाके,
तो बाद में वो सब ऐसे उठा के लेके जाते हैं और सब जाके बंदर में जाके उसको जाया कर देते हैं। तो ये कुछ लोगों ने ऑफर भी की उनको बाज ममालिक ने कि भाई ये जो इतना जाया हो रहा है गोश्त, अगर आप इजाजत दें तो हम इसको कुछ मैनेज करें ताकि इसका एक हिस्सा निकाल कर गरीब कामों को पहुंचाएं, लेकिन वो इसके लिए शायद इजाज़त नहीं देते या वो ज़रूरी नहीं समझते। तो एक तो वहाँ का हाल भी यही है, जो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, जो एक आदमी एक आम आदमी जब जाता है तो वो सोचता है ना कि मतलब कुर्बानी जो एक इबादत है और हज में तो एक वाजिब है अमल है, तो उसका अगर कोई मसरफ ना हो और इस तरह ये गोश्त जाया हो रहे हूँ तो क्या मसल, यानी इस्लाम ने एक हुक्म जो दिया है तो क्यों दिया है, वो इसलिए दिया है कि मसल ये सब वेस्ट हो।
सही,
तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है बेहतर अंदाज में। अच्छा अपने यहाँ आइए आप,
इनफरादी जिम्मेदारी क्या होगी इसमें ये बताएं, हमारे मोहल्लों में जो
जी इनफरादी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, इनफरादी नहीं अभी इज्तिमाही है, कि हमारे गली मोहल्ले में अवलन तो देखें जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग जानवर ज़िबा करते हैं घर के बाहर और सड़कों पर और पार्कों में ज़मीन पे हर जगह खून, ये आपको इवन मुस्लिम वर्ल्ड में कहीं नज़र नहीं आएगा। आप मिडिल ईस्ट में जाके देख लें, आप ईरान में देख लें, टर्की में देख लें, कहीं आपको इस चीज की इजाजत नहीं है कि आप रोड के ऊपर जो है वो जानवर ज़िबा करें, ये अलाउ नहीं है।
अलाउ
उन्होंने जगह बनाई हुई है और वहां लोग जाते हैं और वह जो प्रोफेशनल उनके वो हैं
कसाब
वो ज़िबा करते हैं और आपका हिस्सा भी आपको दे देंगे कुछ, बाकी ठीक है। लेकिन इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ होता है, ये मुस्लिम वर्ल्ड में भी शायद चंद मुल्कों में होता हो, बांग्लादेश पाकिस्तान इसी टाइप के एक दो मुल्कों में, अदरवाइज कहीं और नहीं होता। और ये बहुत इनहाइजीनिक है, जाहिर है जिस तरह से खून पड़ा हुआ होता है सड़कों पर और आलाइशें पड़ी होती हैं, और आपको पता है उठाने का इंतजाम तो हमारे यहाँ हमेशा शिकायतें रहती हैं उसकी, तो उससे जो है वो ताफुन फैलता है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि अगर आपने कुर्बानी की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पर गंदगी हो, बीमारियाँ फैलें, तो सफाई और पाकिजगी जाहिर है इस्लाम की तालीमात में से उनका ख्याल रखना चाहिए।
इनफरादी और इज्तिमाई अंदाज में इसको जितना अच्छा हम लोग सेटल कर सकें चीज़ों को वो करना चाहिए।
बिल्कुल
माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि कुर्बानी करें लेकिन इन तमाम बातों का ख्याल रखें कि जो कि अभी हमारे इस प्रोग्राम में जिक्र हुई हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर एक प्रोग्राम के साथ एक टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।